बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। किंतु इससे पूर्व कि आप अपना ध्यान बाइबल अध्ययन की ओर लगाएं, मन की तैयारी के लिए प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से उसके वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों पहला कुरिन्थियों की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि किस रीति से वरदान अर्थात भाषाएं हमारे जीवन के लिए या हमारे कलीसिया के लिए लाभदायक हैं। पौलुस ने इन बातों को हमें सिखाया। आज हम उससे आगे अपने अध्ययन में बढ़ेंगे और 15 अध्याय से अध्ययन करेंगे और जिसमें हम देखेंगे पुनरुत्थान। लेकिन इसके पूर्व कि हम अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। यह सच है कि हम दुर्बल और कमजोर लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद आप हमसे प्रेम करते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, विशेष करके हमारे उन श्रोता मित्रों को जो अपने जीवन में निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। प्रभु, आप उन पर कृपा दृष्टि करें, उन्हें शांति और आनंद प्रदान करें, ताकि वे आपके उस पुनरुत्थान की बात को समझ सकें और अपने जीवन में महान आशीषों को ग्रहण कर सकें। इस समय हम सबके साथ हो, हमारी सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम जिस अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं उसे बाइबल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य अध्यायों में रखा गया है। यदि आप बाइबल के 10 महान अध्यायों का चयन करें, जैसा कि मनुष्यों ने मसीही युग के आरंभ ही से किया है, तो आप देखेंगे कि पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उस सूची में है। और यही नहीं, यह अध्याय आज तक की सब महत्वपूर्ण अध्यायों की सूची में पाया जाता है। यह अध्याय इतना अधिक महत्वपूर्ण है, यह इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि यह आरंभिक कलीसिया की प्रथम भ्रमित शिक्षा का खंडन करता है। यह भ्रमित शिक्षा थी जो प्रभु यीशु मसीह के सदेह पुनः जीवित होने का इनकार करती है। मेरे प्रियो, इस अध्याय में पौलुस तीसरी महान आत्मिकता की चर्चा करता है। आपको स्मरण होगा कि उसने सबसे पहले सांसारिकता अर्थात देह की लालसाओं के विषय पर चर्चा की थी। उसने उन विषयों का उल्लेख किया था जो कुरिन्थ की कलीसिया के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे और आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद वह सांसारिकता से हटकर आत्मिकता की चर्चा करता है। यह जानना कैसी अद्भुत बात है कि प्रत्येक विश्वासी को वरदान प्राप्त है, जी हाँ, जो पवित्र आत्मा की देन है। मैं इससे अधिक रोमांचकारी बात दूसरी नहीं देखता कि परमेश्वर ने आपको और मुझे वरदान से भर दिया है कि इस संसार में उसे काम में लें और मसीह यीशु के साथ उसे जनप्रिय बनाने के महान कार्य में उसके सहकारी हों। मेरे मित्रों, पौलुस प्रेम के विषय पर आता है कि सब वरदानों का अभ्यास प्रेम पूर्ण होना है। प्रेम पवित्र आत्मा का फल है। हम प्रेम को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, प्रेम हमें दिया जाता है। हमें एक विश्वासी में उपस्थित इस पवित्र आत्मा के इस फल प्रेम को सबसे पहले और सबसे ऊपर देखना है। मेरे प्रियो, अब हम तीसरी आत्मिकता के विषय में देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह और हमारे पुनरुत्थान का सत्य है। मसीह विश्वास की महिमा यह है कि वह जीवन को मृत्यु के साथ समाप्त नहीं मानती। जीवन यही तक नहीं है, मसीही विश्वास में सूर्यास्त के बाद सूर्योदय की आशा है। हम अनंत काल को देखते हैं और यह कैसी आशा हमें देता है। जीवन को अर्थ और उद्देश्य पूर्ण करने वाली यह एक और बात है। मेरे मित्रों, मुझे अनंत जीवन की आशा है, परंतु मुझे वहां जाने की शीघ्रता नहीं है। मैं इस जीवन को जितना अधिक जी सकूं उतना अधिक जीना चाहता हूं, क्योंकि मेरे विचार में यह सेवा का स्थान है, यह तैयारी का स्थान है। मेरे विचार में हमारा प्रतिफल हमारे दैहिक कर्मों पर आधारित है और मैं अपने लेखे में कुछ भले काम लिखना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैं यहाँ रहकर उसकी सेवा करना चाहता हूँ जितना भी समय वह मुझे यहाँ रखे। मेरे मित्रों, हम एक गीत गाते थे, क्या मेरे मुकुट पर सितारे होंगे। अब यह गीत सुनने में भी नहीं आता है, क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं ही यहाँ सितारा बनना चाहता है। और मेरे प्रियो, काश हम इस महान परिदृश्य को जो पुनरुत्थान प्रत्येक विश्वासी को प्रदान करता है अंतर ग्रहण कर पाते या उसे स्वीकार कर पाते। हमने स्वर्गरोहण को मन मस्तिष्क से निकाल दिया है और अप्रधान बातों पर ध्यान केंद्रित करना आरंभ कर दिया है। इसके कारण विश्वासियों के जीवन में एक के बाद एक त्रासदी आती जाती है। मेरे प्रियो, यह पुनरुत्थान का महान अध्याय वास्तव में सुसमाचार संबंधित है। इसमें व्यक्त है कि सुसमाचार का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मसीह का पुनरुत्थान है। सच तो यह है कि इसके बिना सब कुछ, यहां तक कि मसीह की मृत्यु भी अर्थहीन हो जाती है। रोमियो के पत्री अध्याय 4 उसके 5 पद के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया और मर कर फिर जी उठा कि हम धर्मी ठहराए जाएं। मृत्यु के द्वारा उसने हमारे पाप हर लिए, परंतु पुनरुत्थान के द्वारा उसने हमें स्वर्ग में निश्चित प्रवेश प्रदान किया। हम उसकी धार्मिकता के अधीन खड़े होते हैं। वह हमारे पापों के लिए मरा, परंतु हमारी धार्मिकता के लिए फिर जी उठा। मेरे मित्रों, इससे पूर्व कि हम इस अध्याय का अध्ययन आरंभ करें, अच्छा होगा कि हम पुनरुत्थान के अर्थ को व्यक्त करके स्पष्ट रूप से समझें या चित्रण करें। पुनरुत्थान आत्मिक नहीं, शारीरिक होता है। यूनानी भाषा में लिखा है, मृतकों पर खड़ा, हमारी देह पुनर्जीवित होगी। धर्मशास्त्र में पुनरुत्थान देह से संबंधित है। यूनानी भाषा के शब्द इस विचार को अधिक स्पष्ट करते हैं, खड़ा होना या खड़ा किया जाना या शरीर का खड़ा होना। अतः इसका संदर्भ आत्मा से नहीं हो सकता है। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विद्वान सी एस लुइस ने अपने युग के मुक्त विचार को उपहास में कहा, आत्मा खड़ी होती है तो कैसी दिखती है, क्योंकि वे पुनरुत्थान को आत्मा का पुनरुत्थान कहते थे। उनके लिए यह एक विचारणीय प्रश्न है। धर्मशास्त्र की शिक्षा में पुनरुत्थान का अर्थ है खड़े होना। मेरे मित्रों, पौलुस के युग में मृत्यु और आत्मा के संबंध में दार्शनिकों के तीन प्रचलित विचार थे। स्टोइक विचार के अनुसार मरणोपरांत अर्थात मरने के बाद आत्मा परमेश्वर में विलीन हो जाती है, अर्थात देह का नाश हो जाता है। इस धारणा में पुनरुत्थान का अस्तित्व नहीं है। दूसरा विचार है इपिकुरियन विचार, जो भौतिकवाद संबंधित है। इसके अनुसार मरणोपरांत जीवन नहीं है, मृत्यु अंतिम चरण है। और तीसरा विचार प्लेटो का था कि आत्मा अमर है, उसका पुनर्जन्म होता है। यह विचार आज भी प्रचलित है। इसमें दैहिक पुनरुत्थान का कोई स्थान नहीं है। इन विचारों के प्रतिवाद में जब पौलुस ने एथेंस में पुनरुत्थान की चर्चा की, तो वे सोच रहे थे कि वह एक नए ईश्वर की चर्चा कर रहा था। मेरे प्रियो, हमें स्पष्ट समझ लेना है कि पौलुस आत्मिक पुनरुत्थान की चर्चा या बातें नहीं करता है। आत्मा नहीं मरती है, मनुष्य की मृत्यु पर आत्मा देह त्याग करती है। यदि मृतक परमेश्वर की संतान था, जिसे हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:6-8 के अनुसार मृत्यु का अर्थ है देह से निकलकर प्रभु के पास जाना। यदि मृतक अविश्वासी है तो उसकी आत्मा देह से निकलकर पीड़ा के स्थान में जाती है, जैसा प्रभु यीशु ने कहा है। इस अध्याय का विभाजन निम्न रूप में हम करते हैं। आइए देखें, पहला सुसमाचार में पुनरुत्थान का महत्व पद 1-4, दूसरा पुनरुत्थान के प्रमाण पद 5-19, तीसरा पुनरुत्थान का प्रगटीकरण पद 20-28, चौथा पुनरुत्थान की योजना एवं नमूना पद 29-50, पांचवा पुनरुत्थान का सामर्थ्य पद 51-58। मेरे मित्रों, सुसमाचार में पुनरुत्थान का महत्व। पौलुस कहता है कि पुनरुत्थान सुसमाचार का एक भाग है। सच तो यह है कि पुनरुत्थान बिना सुसमाचार नहीं है। डॉक्टर माचेन का कहना है कि मसीही विश्वास धारणाओं और मान्यताओं पर आधारित नहीं है, वह तथ्यों पर आधारित है। सुसमाचार 10 आज्ञाएं और पर्वतीय उपदेश नहीं है। सुसमाचार किसी मनुष्य यीशु के बारे में तथ्यों का एक क्रम है। अब सुनिए कि पौलुस इसकी व्याख्या कैसे करता है। आप मेरे साथ निकाल करके रखिए 1 कुरिन्थियों की पत्री 15:1-4 में। 1 कुरिन्थियों की पत्री 15:1-4 लिखा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मेरे प्रियो, कभी कभी एक प्रश्न उठता है कि क्या सुसमाचार का आरंभ पौलुस से है। पौलुस कहता है, मैंने तुम्हें वह पहुंचा दिया जो पाया है। उसने किससे और कहां इसे पाया? उसने यह रेगिस्तान में पाया जहां प्रभु उसे ले गया था कि शिक्षा उसे दे। दमिश्क के मार्ग में प्रभु यीशु से साक्षात्कार के समय वह प्रभु के पुनरुत्थान से अज्ञात था। उसने पूछा था, प्रभु तू कौन है, जिसे हम प्रेरितों के काम 9:5 में पढ़ते हैं। उसे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि वह प्रभु यीशु था। पौलुस को स्वयं भी पुनरुत्थान का आश्वासन प्राप्त करना था। उसने इसके बारे में धारणा नहीं बनाई, उसने इसे प्राप्त किया था। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि उसने उन्हें सुसमाचार सुनाया। यह सुसमाचार क्या है? धर्मशास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा, और धर्मशास्त्र के ही अनुसार वह मरा और तीसरे दिन फिर जी उठा। यही सुसमाचार है। मेरे मित्रों, ये तथ्य हैं। इन तीन तथ्यों के अतिरिक्त कोई सुसमाचार नहीं है। मसीह यीशु आपके और मेरे लिए मरा। वह आपके और मेरे पापों के बदले में मरा। वह कब्र में रखा गया और वह फिर से जी उठा। यही सुसमाचार है, यही शुभ संदेश है। अब मान ले कि आप मेरे पास आकर कहते हैं, श्रीमान जी, आपके लिए मेरे पास सुसमाचार है, मैं आपको करोड़पति देखना चाहता हूं। मैं कहूंगा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। तब आप मुझे अपनी योजना समझाएंगे। आप कहेंगे, आप मेरी नौकरी पकड़ लो और 1000 वर्ष के बाद आपका मूल्य 50 लाख रुपए का हो जाएगा। मैं आपसे कहूंगा, निश्चय ही मैं 50 लाख रुपया पाना चाहता हूं कि सुसमाचार प्रचार करूं। परंतु यदि आप यह सोचते हैं कि मैं नौकरी करके 50 लाख रुपए जमा कर लूंगा, तो यह आपका भ्रम है। जी हाँ, यह तो सुसमाचार नहीं है। सच तो यह है कि यह अशुभ समाचार है। परंतु यदि आप मुझसे कहते हैं, मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा है जो आप में सद्भावना रखता है, और जब वह मरा तो उसने आपके नाम 50 लाख रुपए कर दिए हैं, तो मेरे मित्रों, यह सुसमाचार है। सुसमाचार हमसे कुछ करने को नहीं कहता है। सुसमाचार कहता है कि यीशु ने हमारे लिए कुछ कर दिया है। वह हमारे पापों के लिए मर गया। धर्मशास्त्र कहता है, वह कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वह फिर से जी उठा। वह मरा, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है और सत्य है। इससे इनकार करने वाले बहुत कम हैं। इसमें जोड़ा जाएगा कि उसे कब्र में रख दिया गया था। यह महत्वपूर्ण क्यों है? इससे सिद्ध होता है कि वह विलोप नहीं हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि उनके पास वास्तव में उसका पार्थिव शरीर था। निकोदिमुस और अरमतिया का यूसुफ और उसका क्रूसीकरण देखने वाले सब उसे जानते थे कि वह कौन था। वे जानते थे कि वह यीशु था और उन्होंने उसकी मृतक देह को कब्र में रखा था। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे उसकी मृत्यु सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र के अनुसार वह तीसरे दिन फिर जी उठा। पुनरुत्थान सुसमाचार का एक भाग है। कब्र खाली थी, यह एक प्रमाण है। सुसमाचार है कि यीशु मरा, कब्र में रखा गया और फिर जी उठा। यह उसका पहला प्रमाण है। मेरे प्रियो, पुनरुत्थान का एक और प्रमाण है कुरिन्थ के विश्वासियों का अनुभव। आइए हम फिर से सुने कि पौलुस क्या कहता है। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। 15:1-2 में, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ, अर्थात तुम्हारा विश्वास खोखला है, दिखावा है। मेरे मित्रों, विश्वास खोखला भी होता है, परंतु पौलुस कहता है कि उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। कलीसिया मसीह के पुनरुत्थान का प्रमाण है। यरूशलेम और उसके परिवेश में 11 निराश मनुष्य थे। वे लौटकर मछली पकड़ने जाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने बहुत परेशानियां उठाई थी। यदि मसीह मरा हुआ पड़ा रहता तो वे कब्र से देह उठाना नहीं चाहते। वे रोमी मुहर को तोड़ना नहीं चाहते कि रोमी सैनिक उन्हें पकड़े। वे अधिक परेशानी में पड़ जाते। इसके बाद क्या हुआ? उन्हें समाचार मिला कि यीशु जी उठा था। इस सत्य ने इन मनुष्यों का जीवन बदल दिया। इस अमूल्य तथ्य के कारण कलीसिया की उत्पत्ति हुई। 20वीं शताब्दी में असंख्य मनुष्यों ने स्वीकार किया है कि मसीह यीशु जीवित है, मृतकों में से जी उठा है। आप पुनरुत्थान से अलग कलीसिया का विवरण नहीं दे सकते हैं, लेकिन प्रश्न यह है, क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के कारण मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा? मैं यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उद्धार पाता हूं। उसके पुनरुत्थान के बिना मेरे पास सुसमाचार नहीं होता, न जीवित मसीह, न एक उद्धारकर्ता होता। मेरे प्रियो, विश्वासियों के समूह की उपस्थिति पुनरुत्थान का दूसरा बड़ा प्रमाण है। मेरे मित्रों, एक प्रमाण और है ध्यान दीजिए कि लिखा है, धर्म शास्त्र के अनुसार वह हमारे पापों के लिए मरा और कब्र में रखा गया, परंतु तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। धर्म शास्त्र के अनुसार से क्या अर्थ है? पुराने नियम के अनुसार पौलुस की यूरोप, फिलिपी, थिसलोनिका, एथेंस, कोरिंथ प्रचार यात्रा में मैं उसके साथ जाने की हार्दिक कामना करता हूं। मेरे प्रियो, मेरे विचार में उसके पास पुराने नियम की प्रति थी। मैं कल्पना कर सकता हूं कि आराधनालय में जब उसने मसीह यीशु की मृत्यु का उल्लेख किया, तब यहूदी कहने लगे, धर्मशास्त्र में तो इसकी भविष्यवाणी नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर में वह उत्पत्ति की पुस्तक को खोलकर कहता है, मैं आपको इसहाक की बलि स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अब्राहम ने उसे मृतकों में से फिर जीवित पाया जब वह उसे मारने जा ही रहा था। परंतु परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा और हमारे लिए निर्मोल उसे मरने के लिए दे दिया। तब वह बलि चढ़ाने की मूसा की विधि निकालता है और लेव व्यवस्था की पुस्तक में से व्यक्त 5 प्रकार के बलिदान और समझाता है कि वे मसीह की ओर संकेत करती हैं। तब प्रायश्चित का महान दिवस और मसीह की मृत्यु पुनरुत्थान के प्रत्येक 2 मेमने, उसने हारून की लाठी से पत्ते फूटना और योना जो पुनरुत्थान का प्रतीक है आदि बातों को दिखाया। इसके पश्चात वह भजन संहिता 22, भजन 16 भी दिखाया और यशाया के पुस्तक 25 अध्याय एवं 53 से उसने दिखाया कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, सब अपने अपने मार्ग में थे, परंतु परमेश्वर ने हमारे पाप उस पर डाल दिए। इस प्रकार वह उन्हें पुराने नियम से दिखाता था कि मसीह यीशु का मरकर फिर से जी उठना पूर्व निर्धारित था। मेरे मित्रों, पुराने नियम की आशा केवल इसी जीवन की नहीं, आने वाले जीवन की भी थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वे मरने के बाद जीवन के कर्म में विश्वास नहीं करते, उन्हें केवल वर्तमान धर्म चाहिए। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि मेरे पास दोनों हैं, वर्तमान धर्म और मरने के पश्चात का धर्म? मेरे मित्रों, आइए हम आगे देखें। पुनरुत्थान के प्रमाण अर्थात गवाह। पुनरुत्थान के प्रमाण में पौलुस कुछ गवाह उपस्थित करता है। आज कोई भी वकील केस लड़ने के लिए इतने गवाह पाकर अति प्रसन्न होगा जितने गवाह पौलुस खड़े करता है कि पुनरुत्थान की गवाही दें। पहला कुरिन्थियों के पत्र 15 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। मित्रों ध्यान दीजिए, वह सबसे पहले कैफा का नाम लेता है। शमौन पत्रस, जिसे यीशु का व्यक्तिगत साक्षात्कार प्राप्त हुआ था। आप पूछेंगे क्या हुआ था? यह न तो मेरा और न ही आपकी चिंता का विषय है, यह हमारे लिए नहीं लिखा गया। पत्रस ने यीशु का इनकार किया था, इस कारण यीशु पत्रस पर प्रकट हुआ, क्योंकि पत्रस को यीशु के साथ संबंध सुधारना था। देखिए, यीशु अब भी पांव धोने की सेवा कर रहा था। मेरे प्रियो, तब 12 ने उसे देखा। ये 12 कौन थे? पत्रस के अतिरिक्त 10, क्योंकि पत्रस को तो उसने व्यक्तिगत दर्शन दिया था, यहूदा की तो मृत्यु हो गई थी, और 12 में से 12 शिष्यों के समूह के लिए काम में लिया जाता था, जिसका अर्थ यह नहीं कि वे संख्या में 12 थे, तथापि यदि आप पौलुस को उनमें जोड़ दें तो वे 12 हो जाते हैं। तब हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। मेरे मित्रों, यीशु को एक साथ 500 मनुष्यों ने भी देखा था। मेरे विचार में यह गलील सागर के निकट की घटना है, और उसके सच्चे भक्त उसे भेंट करने गलील को गए थे। जब वे गलील जा रहे थे तो अति संभव है कि लोग उनसे पूछते होंगे, यीशु तो मर गया, अब तुम फिर मछली पकड़ने जा रहे हो क्या? उन्होंने कहा होगा, नहीं, यीशु जी उठा है और हम उससे भेंट करने जा रहे हैं। इस प्रकार उससे भेंट करने वहां 500 भक्तों का जनसमूह एकत्र हो गया था, और वहां उन्होंने यीशु को अपनी आंखों से देखा। मेरे मित्रों, आज प्रश्न यह है कि क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वह मृतकों में से जी उठा है? यदि नहीं तो ये सबसे बड़े धोखे की बात है, क्योंकि यह निश्चय जान ले कि धर्मशास्त्र परमेश्वर का वचन हमें बताता है पौलुस प्रेरित के माध्यम से कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और आज भी वह जीवित है और वह चाहता है कि मैं और आप उस पर विश्वास करें, क्योंकि उद्धार उसी के द्वारा है। परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जी हाँ, सिर्फ यीशु है जो मेरे और आपके पापों के लिए मरा, और सिर्फ मरा ही नहीं, वह जीवित हो उठा। आज भी वह जीवित है, वही आपके पापों की क्षमा दे सकता है, और दूसरा कोई नहीं। क्या आज आप चाहते हैं कि आप अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करें? यदि हाँ, आज प्रभु यीशु के पास आए, उसे अपने जीवन में स्वीकार करें और कहें, प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा करें। आज मैंने इस बात को जान लिया है कि आप मेरे पापों के कारण कलवरी क्रूस पर मर गए ताकि मैं उद्धार प्राप्त करूं, मैं जीवन प्राप्त करूं, मैं शांति प्राप्त करूं। मेरे मित्रों, यदि आज आप निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, अशांति में हैं, आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं। वह आपके जीवन में शांति और आनंद देना चाहता है। सिर्फ आप स्वीकार करें, प्रभु आज मैं आपको स्वीकार करता हूं। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज आप एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए लेंगे। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।